भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतो पङ्गो मन्दमते गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधामदनमोहन
दिव्यवृन्दारण्यकल्पतरुमस्तिमरत्नारायणसिंहासनस्थ
श्रीमद्राधाशिवगोविन्ददेवो हृष्टादिभिसेवमानस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटत्तटस्थितः कर्षणवेणुस्वने गोपी गोपीनाथा श्रियस्तनः कथाञ्जनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सब कैसे हैं? ठीक है। हम एक महीने गोकुलधाम में रह के आए, वहाँ का जीवन बहुत अलग है, बहुत सात्विक और आनंदमय जीवन है। यहाँ भी आश्रम के अंदर तो आनंदमय है ही, लेकिन वहाँ ऐसे पाँव वाँ 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 वो सब नहीं आता था। इससे ये पता चलता है कि हमने प्रगति के नाम में कितना कुछ खोया है मनुष्य समाज में। अभी यहाँ हम लोग रथ यात्रा की तैयारी करने जा रहे हैं। आप में से कितने भक्त यात्रा में गए थे? यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सब भक्त कहाँ हैं? बाहर गए हैं? हाँ, ऑल्टर में क्या टाइम हुआ अभी? तो रथ यात्रा और बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार करने का अवसर है। हजारों की संख्या में, जैसे आप सब जानते हैं, लोग आते हैं, यात्रा में शामिल होते हैं, और यहाँ जो पंडाल के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी आते हैं। इतने सारे लोगों को कृष्ण भावनामृत का लाभ मिलता है। इसलिए अभी हमें हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा की तैयारी बड़े उत्साह से करना चाहिए। हर साल ब्रह्मचारी आश्रम से भी सभी भक्त कोई न कोई सेवा में बहुत व्यस्त रहते हैं रथ यात्रा के लिए, तो निवेदन है सबसे कि इस साल भी ऐसे ही हो, सभी लोग अपने अपने सेवाओं में लगे रहें। और विशेष करके अब जगह जगह जाना है, क्योंकि रथ यात्रा के आयोजन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। 50, 60, 70 लोगों का प्रसाद, 1000 लोगों का प्रसाद होता है, इतने बड़े पंडाल में लोग आते हैं, भीड़ को संभालना, बहुत कुछ करना है। फिर रथ यात्रा भी अपने आप में बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है। तो शायद अभी बाहर जाके अनाज आदि एकत्र करने के लिए योजना बनाई है ना, सब जा रहे हैं अभी?
इसके बाद जाएंगे।
इसके अच्छे हर साल जाते हैं ना। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं, हाँ, हम उनसे मांगते तो हैं अवश्य, परंतु लाभ सबसे ज़्यादा उनको होता है जो देते हैं। तो हम केवल लोगों से लेने नहीं जा रहे हैं, उनको भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का एक अवसर दे रहे हैं। ये हमारा भावना होना चाहिए। जगन्नाथ सारे जगत के नाथ है, वेलगाम के नाथ है, तो उनको, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। षड ऐश्वर्य संपन्न है जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण, तो उनको थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा धन एकत्र करके देने से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? पहले से तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की हैं, लेकिन जो दान दे रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। और हम जो उनके पास जाएंगे उनसे अनाज आदि एकत्र करने के लिए, हमें भी बहुत फ़ायदा होगा और अनेक हजारों हजारों लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो रथ यात्रा जैसे उत्सव ये समाज के कल्याण के लिए बड़े बड़े महोत्सव होते हैं। प्रभुपाद जी ने इस उद्देश्य से ऐसे उत्सवों की स्थापना की। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि। श्रीमद् भागवत में नारद जी बताते हैं व्यासदेव जी को कि भगवान की जो कथाएं हैं वो लोगों के हृदय में एक क्रांति उत्पन्न करा कर सकती हैं। किसकी क्रांति है? हृदय की क्रांति है, जिससे वो पाप करने की प्रवृत्ति हृदय से नष्ट हो जाती है। तो सारे उत्सव जो हम मनाते हैं उनका उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे उत्सव के संबंध में आए, संपर्क में आए, उनको लाभ इस प्रकार का हो कि वो भगवान कृष्ण के प्रति और निकट चले जाएं। भले वो भक्त बने या न बने, परंतु जो उन्होंने एक अनुकूल भाव दिखाया है भगवान के प्रति, उससे अवश्य उनकी सुकृति बढ़ेगी और एक न एक दिन निश्चित ही वो भक्त बनेंगे। और अनेक लोग हैं जो वास्तव में भक्त बन ही जाते हैं। इसलिए ऐसे विशाल उत्सवों को भी प्रभुपाद चाहते थे मनाने के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से सारा समाज इतना पतित होते जा रहा है और इतने तरह तरह के बुरी आदतें और बुरी वृत्तियां और अपसंप्रदायिक ज्ञान फैल रहा है, असत्य फैल रहा है, जब तक हम कुछ बड़े पैमाने पर करते नहीं जाएंगे इस समाज में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि हम छोटे चीज़ों को भूल नहीं सकते, बड़े बड़े युद्धों को चलाते समय, बड़े युद्धों में विजय प्राप्त करने के पहले हमें जान लेना चाहिए कि अंदर के छोटे युद्ध को भी हमें जीतना चाहिए, है ना। अंदर का छोटा युद्ध किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ? मन के खिलाफ। जो मन हमको हैरान करता है, सताता है, जो कि भौतिक इच्छाओं का भंडार है, ऐसे मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये छोटा युद्ध वास्तव में सबसे बड़ा युद्ध है। इस युद्ध को हम जीतेंगे तो बड़े युद्ध को भी आसानी से जीत पाएंगे। लेकिन कैसे जीता जाए इस मन को? अर्जुन ने तो कृष्ण में कहा ही, अर्जुन ने तो कृष्ण से कहा ही है भगवद गीता में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रह मन ने वायोर वसु दुष्करम, कि मन बड़ा बलवान है, बड़ा चंचल है, प्रबल है, उसको जीत लेना वायु से को जीतने से भी ज्यादा कठिन है। तो फिर ये छोटी सी विजय, छोटा सा ये छोटी, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो एक और हमारे अंदर का बड़ा युद्ध हमें लड़ना है और साथ साथ बाहर का बड़ा युद्ध भी लड़ना है, और दोनों का गहरा संबंध है। कि जब तक हम अंदर का युद्ध जीतने के लिए ज़्यादा हृदय से प्रयास नहीं करेंगे, बाहर के युद्ध में हमें लड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी, उत्साह नहीं मिलेगा, वो तेजस तेज नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर बाहर के युद्ध में जब हम कार्य करेंगे, कुछ उसमें शामिल होंगे, तो हृदय का युद्ध जीतने के लिए भी हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसे उत्सवों को मनाना ये भी एक भक्ति का अंग है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि उत्सव मनाना ये साधन भक्ति के 64 अंगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उत्सवों के संबंध में इन 64 अंगों में अनेक अंग संबंधित हैं, बल्कि ऐसे उत्सवों में भक्ति के समस्त अंगों का पालन होता है। प्राय 64 के 64 है, भले 64 न भी हों, लेकिन अधिकतर जितने भी अंग हैं भक्ति के, साधन भक्ति के, वो सब ऐसे उत्सवों में पूर्ण हो जाते हैं। तो हम दुनिया के लोगों को क्या देने जा रहे हैं? एक ऐसा अनुभव आध्यात्मिक जगत का जो उनके जीवन को, उनके हृदय को परिवर्तित कर सकता है हमेशा के लिए, ऐसा एक अनुभव हम उनको देने जा रहे हैं। और हमारे लिए भी ये एक बहुत पावन अनुभव है, हमें भी अपने अंदर के युद्ध में जीतने के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। तो दोनों चीजें हैं, अंदर के युद्ध जीतने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, जप करना, पढ़ाई करना, सेवा करना, कीर्तन करना, मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा करना आदि, इससे अंदर के युद्ध को जीतने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं, और बाहर जाने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। जैसे कि ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, जब महाप्रभु ने उनके शिष्य के रूप में स्वीकार करके कहा कि कैसे आगे मुझे बढ़ना चाहिए, ईश्वरपुरी ने कहा था कि अपना नाम संकीर्तन अच्छी तरह से करो, अर्थात अपनी साधना अच्छी तरह से करो, और फिर आगे चल के खूब प्रचार करो। ये ईश्वरपुरी का आदेश महाप्रभु को है। तो दोनों चीजें चाहिए, हमारे अंदर के युद्ध जीतने के लिए हमारी साधना, सेवा, नियम पालन आदि, और प्रचार के लिए बाहर का युद्ध। दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से संबंधित है। यदि हम केवल अपना भजन कर रहे हैं परंतु प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस बाहर के लोगों तक के पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा श्रवण कीर्तन किस काम का? और यदि हम केवल अन्यों को प्रचार करने जाएंगे, खुद की साधना नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे मंदिर में, तो फिर वो शक्ति हमें नहीं मिलेगी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए या प्रचार करने के लिए। तो इसलिए ऐसे जो भी उत्सव के संबंध में सेवाएं होती हैं, ये न केवल दान देने वालों के लिए भला है, न केवल प्रजा के लिए भला है, बलगाम की जनता के लिए भला है, लेकिन हम सबके लिए भी ये बहुत पावन है। वास्तव में शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य होता है भिक्षा मांगना, ऐसे ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, शास्त्रों में बताया गया है। भिक्षा एक प्रमुख सेवा होता है। तो प्रभुपाद जी ने ये रथ यात्रा का महोत्सव सारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में स्थापित किया है, विश्व भर में। तो अभी हमें प्रभुपाद जी को गुरु दक्षिणा देनी है और उनकी ओर से भिक्षा मांगना है सबसे जाके। लेकिन ये ऐसी भिक्षा है जिससे उनको, दान देने वालों को बहुत लाभ होगा। शायद वो लोग भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कितना लाभ होगा, और उनकी बात तो दूर है। कभी कभी जब भक्त जाते हैं दान लेने के लिए, भक्तों को भी इतना याद नहीं रहता कि उनको अभी कितना लाभ मिलने वाला है दान देने से। छोटा सा भी दान, कोई चीज भगवान के लिए करता है, भगवान भूलते नहीं है। ईश्वर रस भाव अल्प सेवा बहु कोरी मानी। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, ईश्वर भगवान का स्वभाव है कि थोड़ी सी सेवा जो भक्त करता है उसको बहुत बड़ा मानते हैं, और अपराध न लाए वो भक्तों का अपराध स्वीकार नहीं करते भगवान। छोटी सी सेवा करते उसको बहुत बड़ा मानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अनुकूल भाव से, श्रद्धा भाव से थोड़ा भी कुछ देता है, एक मुट्ठी अनाज भी देता है, फिर भी उसकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, उसके खाते में हमेशा के लिए लिखा रहता है, और वो भक्त निश्चित ही बनेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए इतने करोड़ों जन्मों से जो जीव यहां अटक के पड़ा है भौतिक सृष्टि में, उसको ये करोड़ों जन्मों की यात्रा समाप्त करने के लिए हम अभी अवसर दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है वास्तव में। यदि हम हर जीव का इतिहास जानते जिसके पास हम गए हैं दान देने के लिए, कि इसका इतिहास क्या है, कितने जन्मों से वो यहाँ है और नाना प्रकार के योनियों में से गुजर चुका है, और अब जब जगन्नाथ भगवान की सेवा करेगा तो उसको क्या अवसर मिलेगा, और आगे चल के कितने जन्मों से हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाएगा, तब थोड़ा बहुत हमें एक अंदाज मिल सकता है। तो हम जो अभी झोली फैलाकर हाथ में लेके जाएंगे, तो इसके पीछे ये एक रहस्य है। हमें सोच विचार करना चाहिए, प्रभुपाद जी की और गुरु परंपरा के भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए हम अन्यों के ऊपर भगवान की कृपा ले जा रहे हैं, उनको सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। अभी बहुत दिन बाकी नहीं है, अभी केवल 3 हफ्ते हैं शायद, और सारे बेलगाम में, बेलगाम के परिसर में भी बहुत श्रद्धालु लोग हैं जो सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। केवल हमें उन तक पहुंचना है बस। तो आप सबसे निवेदन है कि बड़े उत्साह से अभी आप आगे बढ़िए, जो भी सेवा है वो बड़े दृढ़ता से, उत्साह से करिए, चाहे वो अनाज की भिक्षा लेके आना हो, या धन की भिक्षा लेके आना हो, या कोई भी दूसरी सेवा हो, उसको बड़े हृदयपूर्वक, उत्साहपूर्वक कीजिए और रथ यात्रा को बहुत सफल उत्सव बनाइए। जो भी तैयारियां आपको करनी है, अलग अलग स्टॉल्स यदि करने हैं तो अभी से शुरुआत कीजिए और देरी नहीं करिए, ताकि ऐन वक्त पर गड़बड़ करके करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा, प्रचार आदि जो भी करने हैं वो फिर इतना लाभदायक नहीं होगा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्त अभी बीमार पड़ गए थे ना, कई भक्त जो दक्षिण भारत में गए, सब ठीक है अभी सबका तबीयत? कौन कौन भक्त यहाँ रहे थे जो नहीं गए यात्रा में? अच्छा, तो आपको भी गोलोक वृंदावन का लावस मिलेगा, आपको भी अवसर मिलेगा। एक दृष्टि से जो यहाँ रहे वहाँ रहे, दोनों जगह भगवान की सेवा करते रहे, कोई अंतर नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, दोनों को फायदा ही फायदा हुआ है ना? आज ही आए ना सभी लोग? कल आए?
परसों
आए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रसाद लिया ना सबने? ठीक है, हरे कृष्णा।